लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए याचना करते हैं, ताकि उनकी व्यथाओं पर समाज अपना ध्यान केंद्रित करे और समावेशी कार्यक्रमों द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, जब हम अपने जीवन में किसी बीमारी का शिकार होते, हमें शारीरिक रूप में कोई चोट लग जाती, तो हम उस तकलीफ भरी स्थिति से जल्दी चंगाई प्राप्त करने की आशा करते हैं और इसके लिए हम कई रूपों में व्यक्तिगत प्रयास करते हैं। वैसे ही यदि हमारे परिवारों में कोई परेशानी अथवा कोई तकलीफ आ जाती, तो हम उसके निदान हेतु अपनी ओर से हर संभव कोशिश करते हैं। अपनी शारीरिक बीमारी, पारिवारिक मुसीबतों और समस्याओं का समाधान तथा उन कठिन परिस्थितियों से पारे जाना हममें एक तरह से चैन और सांत्वना के भाव उत्पन्न करते हैं, क्योंकि हम अपने में मुक्ति का एहसास करते हैं। श्रोताओं, आगमन का समय हमारे लिए ठीक वैसे ही मुक्ति के आने की राह देखने का समय है। यह हमारे लिए ईश्वर पिता की ओर से भेजे गए उस मुक्ति अर्थात पुत्र ईश्वर यीशु ख्रीस्त का स्वागत करने हेतु अपने को तैयार करने का समय है। यह हमारे लिए प्रतीक्षा में बने रहते हुए अपने लिए एक अच्छी तैयारी करने का समय है, जिसे माता कलिसिया अपने सभी संतानों को प्रदान करती है। श्रोताओं, आगमन के पहले रविवार की आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए पाठों में हम तैयारी के इसी आह्वान को गुंजित पाते हैं। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने हृदय में यह पूछें कि क्या मैं अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त के आने की तैयारी हेतु अपने को तत्पर पाता हूँ। उनका स्वागत करने हेतु मेरे मन और दिल में किस तरह के मनोभाव उत्पन्न होते हैं। इस आगमन काल में मैं अपनी तैयारी किन किन स्तरों और रूपों में करने की चाह रखता हूँ।
सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो, उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो, हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वही सबों से कहता हूँ, जागते रहो।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें सावधान रहने में मदद करें, जिसके फलस्वरूप हम अपने दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के प्रति सचेत और संवेदनशील बने रहें, जिससे हम अपने जीवन में मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त की उपस्थिति को पहचान सकें, जो विभिन्न रूपों में हमसे मिलने आते और हर क्षण हमें अपने मुक्तिदायी प्रेम का सुखद एहसास दिलाते हैं। श्रोताओ, नबी इसाईस के ग्रंथ से लिए गए आज के पहले पाठ का संदर्भ बेबीलोन निर्वासन का है, जहां हम ईश्वर के नाम को अनंत काल से मुक्तिदाता के रूप में सुनते हैं। जिनके आने की प्रतीक्षा चुनी हुई प्रजा करती है, क्योंकि वे दुखद परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। ईश्वर हमारे लिए एक सच्चे मुक्तिदाता है, जो हमें सभी तरह की बुराइयों, पाप, दोषों और हमारे गुनाहों से माफी देने आते हैं। अपने मुक्तिदाता ईश्वर का यह स्वरूप हमें उनके अपार प्रेम को प्रकट करता है, जहां वे हमें अपनी योजनाओं और इच्छाओं को नहीं थोपते हैं, बल्कि वे हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जिससे हम अपनी इच्छा अनुरूप चीजों का चुनाव कर सकें। लेकिन इस स्वतंत्रता में हम बहुधा अपने स्वार्थ में उन बातों का चुनाव करते हैं जो हमारे लिए पाप का कारण बनती है। श्रोताओं, आज के पहले पाठ में एक सुंदर उपमा हमारे लिए प्रस्तुत की गई है, जहां हम ईश्वर को कुम्हार और मानव को मिट्टी, तो वहीं मानवीय जीवन चक्र को कुम्हार के चाक स्वरूप पाते हैं। ईश्वर जो कुम्हार हैं, हम मिट्टी के लोंधों पर कार्य करने और हमें अपनी योजनाओं के अनुरूप संवारने की चाह रखते हैं, लेकिन होता यह है कि हम मानव खुद ही कुम्हार बन जाते और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और योजनाओं के अनुरूप संवारने लगते हैं। दुनिया में समस्याओं और मुसीबतों का कारण यही है कि हम अपने स्वार्थ के अनुरूप मनमाने ढंग से अपने लिए चीजों को गढ़ लिया है। ईश्वर ने पाप और बुराई का निर्माण नहीं किया, लेकिन हम अपने स्वार्थ में जो करते वे हमारे लिए पाप और बुराई का कारण बनती हैं। और मुक्तिदाता प्रभु हमें अपने उन्हीं पापों और बुराइयों से मुक्त करने आते हैं। श्रोताओं, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिए गए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कुरिंथ समुदाय के लिए ईश्वर का निरंतर धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ईश्वर की कृपा और शांति को सदैव अनुभव किया है। वे अपने को ईश्वरीय अनुग्रह और ज्ञान से भरा पाते और ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करते हैं। श्रोताओं, हमें अपने जीवन में पूर्णता की इस स्थिति तक पहुंचने हेतु सर्वप्रथम अपने जीवन को स्वीकारने की जरूरत है। यह हमें ईश्वर से मिले जीवन के उपहारों और उनके वरदानों को देखने और पहचानने की मांग करता है। हमारा यह जीवन ही हमारे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है, जिसे हम कृपा के रूप में लेने हेतु बहुधा असमर्थ होते हैं। और क्योंकि हम अपने जीवन को ईश्वर से मिले अनमोल दान के रूप में नहीं देख पाते, हमारे हृदय में कृतज्ञता की दरिया सदैव सूखी रहती है। और क्योंकि हम में कृतज्ञता का अभाव होता है, हम अपने में असंतोष और परम आनंद का अनुभव नहीं करते और ना ही कभी करेंगे। श्रोताओं, आज का सुसमाचार हमें सावधानी में सचेत रहते हुए जागते रहने का आह्वान करता है। हमारा सचेत रहना और जागना कुछ नहीं, बल्कि अपने में इस बात का अनुभव करना है कि ईश्वर ने हमारे लिए किन किन महान कार्यों को पूरा किया है। यह हमारे लिए ईश्वर की उपस्थिति को देखना और उनका अनुभव करना है कि वे हमारे जीवन में सदैव बने रहते और हमारे साथ चलते हैं। वे हमें अपनी आशीष और कृपा दानों से भर देते हैं। श्रोताओं, आगमन का काल हमें अपनी पांचों इंद्रियों को खुला रखने की मांग करती है, जिससे हम ईश्वर के कार्यों को अपने जीवन की हर घटना और हर व्यक्ति में देख सकें। यह हमें अपने जीवन के हर पल को पूर्ण रूपेण जीने का आह्वान करता है, मानो यह हमारे लिए आखिरी क्षण हो। यह हमें अपने जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, वरन इसे दूसरों के लिए जीने का आह्वान देता है। आइए हम स्वर्ग की रानी और ईश्वर की माता मरियम से निवेदन करें कि वे हमारे लिए अपने बेटे से निवेदन करें कि हम सही रूप में जागते हुए अपने जीवन को जी सकें, जिससे हम उनके आने की सच्ची खुशी को अपने संपूर्ण जीवन में अनुभव कर सकें।
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के प्रतिभागियों के सामने संत पापा फ्रांसिस का भाषण पढ़ा, जिसमें संत पापा ने विश्व नेताओं से आग्रह किया कि वे अब कार्यवाही को स्थगित न करें, बल्कि हमारे आम घर और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए ठोस और एकजुट प्रतिक्रियाएं तैयार करें। COP28 के लिए दुबई में उपस्थित न हो पाने पर खेद व्यक्त करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने अपना विश्वास दोहराया कि हम सभी का भविष्य उस वर्तमान पर निर्भर करता है जिसे हम अब चुनते हैं। इस साल का संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन गर्मी और सूखे के रिकॉर्ड साल के मद्देनजर हो रहा है और इसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर रहे देशों के लिए कई विवादास्पद मुद्दे शामिल हैं। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन द्वारा उनकी ओर से दिए गए एक कठोर संदेश में संत पापा ने COP28 के प्रतिभागियों को याद दिलाया कि पर्यावरण का विनाश ईश्वर के खिलाफ एक अपराध है, एक पाप है जो न केवल व्यक्तिगत है बल्कि संरचनात्मक भी, जो सभी मनुष्यों को खतरे में डालता है, विशेष रूप से हमारे बीच के सबसे कमजोर लोगों को और पीढ़ियों के बीच संघर्ष शुरू करने की धमकी देता है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक सामाजिक मुद्दा है और मानव जीवन की गरिमा से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक जरूरी सवाल उठाता है, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, जीवन की संस्कृति के लिए या मृत्यु की संस्कृति के लिए? आप सभी से मैं हार्दिक अपील करता हूं, आइए हम जीवन को चुनें, आइए हम भविष्य को चुनें, हम पृथ्वी की पुकार के प्रति चौकस होवें, हम गरीबों की गुहार सुनें, हम युवाओं की आशाओं और बच्चों के सपनों के प्रति संवेदनशील रहें। हमारी गंभीर जिम्मेदारी है यह सुनिश्चित करना कि उन्हें उनके भविष्य से वंचित न किया जाए। संत पापा ने सुझाव दिया कि वर्तमान पर्यावरणीय संकट से बाहर निकलने का रास्ता एकजुटता और बहुपक्षवाद का रास्ता है और उन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्रभावी सहयोग का आह्वान किया जो इतनी बहुध्रुवीय और साथ ही इतनी जटिल हो गई है कि प्रभावी सहयोग के लिए एक अलग ढांचे की आवश्यकता है। यह परेशान करने वाली बात है कि ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ बहुपक्षवाद में सामान्य गिरावट आई है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के भीतर विश्वास की कमी बढ़ रही है और उन्होंने प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के पुनर्निर्माण में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। संत पापा ने युद्धों की मानवता की ऊर्जा और संसाधनों की बर्बादी की निंदा करते हुए पर्यावरण और शांति के मुद्दे पर परस्पर प्रकृति की ओर ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि इजरायल और फिलिस्तीन में, यूक्रेन में और दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जो समस्याओं को हल करने के बजाय और बढ़ा देती है, हथियारों पर कितने संसाधन बर्बाद किए जा रहे हैं जो जीवन को नष्ट कर देते हैं और हमारे सामान्य घर को तबाह कर देते हैं। उन्होंने पहले से ही व्यक्त प्रस्ताव को फिर से पेश करते हुए कहा, हथियारों और अन्य सैन्य खर्च किए गए धन से आइए हम एक वैश्विक कोष स्थापित करें जो भूख को समाप्त कर सके और गरीब देशों के सतत विकास और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए काम कर सके। इस संबंध में उन्होंने कैथोलिक कलीसिया की प्रतिबद्धता और समर्थन का आह्वान दिया और कहा, कैथोलिक कलीसिया शिक्षा और सभी की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ अच्छी जीवन शैली को बढ़ावा देने के काम में गहराई से लगी हुई है, सभी जिम्मेदार हैं और प्रत्येक का योगदान मौलिक है। और कैनन लॉ के अध्ययन को बढ़ावा देने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर कियारा मिनेली को संबोधित एक पत्र में संत पापा फ्रांसिस ने संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ को याद किया और कैनन लॉ के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों के समर्पण के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। इस बात पर टिप्पणी करते हुए कि यह संघ दुनिया भर की कलीसियाओं और विश्वविद्यालयों के कैनन लॉ के विशेषज्ञों को कैसे एकजुट करता है, उन्होंने कहा, यह तालमेल जो विभिन्न देशों में फैले विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच विकसित हुआ है अत्यधिक सराहनीय है। उन्होंने आगे कहा, यह तालमेल कलीसिया की कानूनी परंपरा की सार्वभौमिक प्रकृति पर प्रकाश डालता है। संत पापा ने कैनन लॉ के प्रति विद्वानों को याद दिलाया कि मानदंड आवश्यक है, परंतु उन्हें यह सुनिश्चित करते हुए लागू किया जाना चाहिए कि वे दयालु यीशु का सामना करने के लिए विश्वासियों की सेवा कर सकें। उधर दुबई में कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण के पांचवें सम्मेलन के लिए विभिन्न देशों से लगभग 3,000 कैथोलिक दुबई में हैं। कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण अंतर्राष्ट्रीय सेवा द्वारा आयोजित यह सम्मेलन 1 से 3 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कैथोलिक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर लोक धर्मी परिवार और जीवन के लिए गठित परम धर्म पीठे विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल केविन फेरेल ने इस अवसर को चिन्हित करते हुए एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने संत पेत्रुस के पहले पत्र के एक उद्धरण पर विचार किया, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, और चार तरीकों की पहचान की जिसमें ख्रिस्तीय पवित्रता के लिए बुलाए जाते हैं। उधर इसराइल और हमास के बीच संघर्ष समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों ने बतलाया कि कम से कम 8 घरों पर हुए हवाई हमलों में 109 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस के पूर्वी इलाकों में समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद शुक्रवार सुबह को गहन बमबारी हुई। कथित तौर पर हजारों निवासी गाड़ियों में सामान भरकर पश्चिम की ओर आश्रय की तलाश में भागे। इनक्लेव के उत्तर में, जो पहले मुख्य युद्ध क्षेत्र था, गोलियों की गड़गड़ाहट और विस्फोट के बीच खंडहरों के ऊपर धुएं का गुब्बार उठ रहा था। इस बीच विश्व नेताओं ने नए हमलों पर खेद और निराशा व्यक्त की, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने कथित तौर पर इसराइल से फिलिस्तीनियों के बड़े पैमाने पर विस्थापन और अस्पतालों, बिजली स्टेशनों और जल सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को नुकसान करने से बचने के लिए कहा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।